नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिमी एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।